नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर इस वर्ष के खरीफ सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता तथा पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत प्रथम देश की विदेश नीति का मूल मंत्र बना। रक्षा मंत्रालय ने 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप में 144 लोगों की मृत्यु और लगभग 700 घायल। थाईलैंड में भी तेज झटके महसूस किए गए। और जॉर्डन में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की मनीषा भानवाला 62 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के लिए 22,000 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टेकन टुडे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है एंड दिस विल बी ओवर 6 इयर्स। बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर। और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा 91,600।
श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ सीजन में 2,10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बिहार में 120 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले 4 लेन के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये इस साल की 1 जनवरी से प्रभावी होगा। इससे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/25। दिस विल बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट एंड द पेंशनर्स आल्सो।
लोकसभा ने आज समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ये विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 का स्थान लेगा। ये कानून समुद्र के रास्ते माल परिवहन के संबंध में जहाजों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और प्रतिरक्षाओं का प्रावधान करता है। संसद में दिनभर हुए कामकाज के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रथम देश की विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया है। भारत अब न केवल विश्व व्यवस्था में भाग ले रहा है बल्कि भविष्य को आकार देने और उसे सुरक्षित करने में भी योगदान दे रहा है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले भारत की विदेश नीति सभी से दूरी बनाए रखने की थी, लेकिन अब सभी के साथ मिलकर काम करने की है।
भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है इंडिया फर्स्ट। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है क्योंकि ये देश दुनिया की एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने केवल 10 वर्ष में अपने सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना कर दिखाया है।
आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में 11वें नंबर की इकोनॉमी बना वो महज 7-8 साल में 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 अप्रैल को थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने आज नई दिल्ली में बताया कि ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की 3री यात्रा होगी।
Prime Minister will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC summit and for an official visit to Thailand from the 3rd to the 4th of April. This will be Prime Minister's 3rd visit to Thailand. In November 2019, he had attended the ASEAN and East Asia summit that was hosted by Thailand. And earlier, he had been to Bangkok en route to Tokyo in November 2016 when he had gone to pay homage to the late King Rama the Ninth.
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रशिक्षण और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं। इन अनुबंधों की कीमत 62,700 करोड़ रुपए है। मंत्रालय ने बताया कि इन अनुबंधों से सशस्त्र बलों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। ये हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। म्यांमार और थाईलैंड में आज आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 144 हो गई है और 732 लोग घायल हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। म्यांमार के सैन्य सरकार के प्रमुख जनरल मेन आंग ड्वाइंग ने आज शाम एक टेलीविजन संबोधन में बताया कि भूकंप से नेपिता में 96 लोग, सागाइंग में 18 और मांडले में 30 लोग मारे गए हैं। जनरल मिन ने कहा कि मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान जम्मू और कश्मीर में बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सोमा सेन राय ने कहा कि अगले 2 दिन तक तेज हवाएं पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करेंगी। राजस्थान में आंधी चलने की आशंका है।
पूरा नॉर्थ इंडिया में, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक स्ट्रांग विंड्स 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और राजस्थान में खासकर डस्ट रेजिंग विंड्स चल रहा है जिससे विजिबिलिटी काफी कम होती जा रही है।
आकाशवाणी का YouTube चैनल आराधना नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को 30 मार्च से 6 अप्रैल तक एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है। आराधना चैनल विशेष भक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला के जरिए दर्शकों तक त्योहारों के मर्म, उनके मूल तत्व को पहुंचाएगा। हर दिन के महत्व को उजागर करते हुए चैनल सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत करेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने रमजान से पहले 500 भारतीय कैदियों को क्षमादान दिया है। ये भारत और खाड़ी देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी सरकार के सक्रिय और निरंतर कूटनीतिक प्रयासों ने पिछले एक दशक में विभिन्न देशों में हजारों भारतीय नागरिकों की रिहाई और क्षमादान को सुगम बनाया है। रिजर्व बैंक ने पहली मई से एटीएम से नकद निकासी पर बैंकों को 2 रुपए की वृद्धि करने की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा है कि मुफ्त धन निकासी के बाद ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपए का शुल्क लिया जा सकता है। ये पहली मई से लागू होगा। जॉर्डन में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मनीषा फाइनल में पहुंच गई हैं। महिलाओं के 62 किलो के फाइनल में मनीषा का मुकाबला कोरिया की ओ के जू किम से होगा। वहीं अंतिम पंगात 53 किलो के कांस्य पदक के मुकाबले में चीनी ताइपे के मेंग हुसवान से खेलेंगे। ज्योति बरवाल क्वार्टर फाइनल में और नेहा शर्मा तथा मोनिका क्वालिफिकेशन मैच में हारकर बाहर हो गई हैं। पदक तालिका में भारत ने अब तक 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 4 विकेट पर 171 रन बना लिए हैं। रजत पाटीदार अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं। आज चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिछले मैच में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को और बेंगलुरु ने वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगी। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा किया जा रहा है। 2 दिन के सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि वो न्यायमूर्ति वर्मा को कोई काम न सौंपें। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ उनके सरकारी आवास पर अवैध नकदी मिलने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति अभय ओका, न्यायमूर्ति उज्जवल भुआन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और आंतरिक जांच पूरी करने का आदेश दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर इस वर्ष के खरीफ सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता तथा पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत प्रथम देश की विदेश नीति का मूल मंत्र बना। रक्षा मंत्रालय ने 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।